पिछले 2 दिनों से आस्तिक को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। वो जितनी जल्दी हो सके बेंगलुरु में अपना काम खत्म करके वापस मुंबई जाना चाहता था, क्योंकि उसका सारा काम वहां पेंडिंग था। लेकिन यहां उसका सबसे जरूरी काम था मल्होत्रा के आदमियों को पकड़ना, जिन्होंने आस्तिक और अरुणिमा पर हमला किया था, वो भी तब जब वे दोनों बिल्कुल अकेले थे। चूंकि वे 50 से भी ज्यादा लोग थे, इसलिए उन्हें ढूंढने और पकड़ने में वक्त लग गया था। आज आखिरकार आस्तिक उन सबका काम निपटाकर ठक्कर हाउस आया था। उसने अभी अभी शावर लिया था और बॉक्सर पहनकर वॉशरूम से बाहर ही निकला था कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। एक पल के लिए वो चौंक गया, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बिना इजाजत उसके कमरे में आ जाए, और अगर कोई आया भी होता तो वो जरूर कोई ऐसा होता जो आस्तिक के बहुत करीब होता। लेकिन दरवाजे पर अरुणिमा को देखकर उसकी नजरें तीखी हो गईं। गांव से वापस आने के बाद से आस्तिक और अरुणिमा की आपस में कोई बात नहीं हुई थी। आस्तिक को इतना समय ही नहीं मिला था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने अरुणिमा को इन 2 दिनों में याद नहीं किया था। गांव में अरुणिमा के साथ बिताए गए वे पल आज तक उसके लिए यादगार थे। उसने अरुणिमा को कुछ अलग अंदाज में देखा था। उसकी बातों में एक अलग सी बात झलक रही थी और उसकी हरकतों में एक अजीब सा खिंचाव था जो आस्तिक ने महसूस किया था। अब अरुणिमा को अपने सामने देखकर आस्तिक की आंखें छोटी हो गईं, क्योंकि अरुणिमा एक ब्लैक ट्रांसपेरेंट नाइटी में थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखों में अजीब सी कशिश थी और होठों पर हल्की गुलाबी लाली के साथ एक मनमोहक मुस्कान थी। आस्तिक उसे देखकर चौंक गया। उसने अरुणिमा को ऊपर से नीचे तक देखा। वो लड़की जो अक्सर उसके सामने झुकी रहती थी, आज उसके सामने अप्सरा बनकर खड़ी थी। क्या वो आस्तिक को सिड्यूस करना चाहती थी? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आस्तिक ने उसे घूरते हुए पूछा। अरुणिमा कमरे के अंदर कदम रखते ही पीछे से दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो गया। वो आस्तिक के करीब आते हुए बोली, तुम काफ़ी बिजी थे तो मेरी तुमसे बात नहीं हो पाई। दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरुणिमा आस्तिक के और करीब आने लगी। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, आस्तिक की नज़रें उसके गुलाबी होठों से उसकी सुराहीदार गर्दन कक गईं और फिर उसके ट्रांसपेरेंट नाइटी के बीच छलकते क्लीवेज तक। इतने दिनों से अंदर बन जज्बात अब बेचैन होने लगे थे। अब दोनों इतने करीब थे कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकराने लगी थीं। आस्तिक ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। किसकी परमिशन से मेरे कमरे में आई हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद अगर तुम चाहो तो मैं यहां से चली जाऊंगी, अरुणिमा ने धीमे से कहा। आस्तिक ने गहरी सांस लेते हुए अपना चेहरा साफ किया और रूखे स्वर में बोला, जो भी कहना है जल्दी कहो, तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अरुणिमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू आस्तिक, जंगल में खोने के बाद तुमने चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल किया था। गांव वालों के सामने भी तुमने खुद को काबू में रखा और फिर जाते वक्त तुमने शंभू और उसके परिवार की मदद की, उसके लिए भी। तुम्हारा एक अलग रूप था जो मैंने वहां देखा था। मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा ऐसे ही रहो। आस्तिक ने उसे खो जाने वाली नज़रों से देखा। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं वैसा ही रहूं? क्या तुम चाहती हो कि मैं बेवकूफ़ और भोला बना रहूं? आस्तिक ने अपना तौलिया साइड में फेंका और एक हाथ अरुणिमा की कमर पर डालकर उसे अपने और करीब कर लिया। कौन सा गेम खेल रही हो जान? उसने धीमे से कहा। अरुणिमा एक पल के लिए चौंक गई, उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो घबरा कर आस्तिक को देखने लगी। इतने दिनों बाद फिर से वो आस्तिक के पुराने रूप को देख रही थी, वही घमंड, वही खतरनाक अंदाज। नहीं, मैं कोई गेम नहीं खेल रही, मैं सच में तुम्हें थैंक यू कहने आई थी। और? आस्तिक ने उसकी तरफ झुकते हुए पूछा। और? अरुणिमा की सांसें गले में अटक गईं, हकलाते हुए उसने कहा, और गांव में बिताए गए वे पल मेरी जिंदगी के सबसे यादगार पल हैं, मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगी। वहां से लौटने के बाद मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फिर फैसला किया कि मैं अपनी किस्मत के साथ समझौता कर लूंगी और अपने रिश्ते को एक मौका दूंगी। आस्तिक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने मजाकिया लहजे में कहा, तो क्या मैं ये समझूं कि तुमने मेरी सबॉर्डिनेशन एक्सेप्ट कर ली है? अरुणिमा चौंक गई, उसकी भौहें तन गईं और उसने हैरानी से आस्तिक को देखा। क्या? उसने सोचा, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं आस्तिक की गुलामी स्वीकार कर रही हूँ? उसने तो बस कहा था कि वो अपने रिश्ते को एक मौका देगी, लेकिन शायद आस्तिक इसका कुछ और ही मतलब समझ बैठा था। लेकिन हिम्मत जुटाकर अरुणिमा ने कहा, मैंने कहा कि मैं कोशिश करूंगी हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने की और तुम जैसे हो उसी रूप में तुम्हें एक्सेप्ट करने की। आस्तिक के चेहरे पर डबल स्माइल आ गई, जो धीरे धीरे मुस्कान में बदल गई। उसने अरुणिमा को छोड़ दिया और हंसते हुए कहा, तो सच में तुम कोशिश करोगी मुझ जैसे मॉन्स्टर को एक्सेप्ट करने की, वो भी पूरी जिंदगी के लिए? क्या तुम मुझे बर्दाश्त कर सकती हो? मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो मैं मर जाऊंगी या फिर मार दी जाऊंगी। अरुणिमा ने जैसे ही ये कहा, आस्तिक उसके करीब आ गया। उसने पीछे से अरुणिमा की गर्दन पकड़ ली। अरुणिमा एक पल के लिए चौंक गई और आस्तिक उसे अपने करीब करते हुए बोला, हाँ बिल्कुल तुम्हारी जोगी, अगर तुमने मुझे भागने की कोशिश की तो। और जहां तक रही मुझे एक्सेप्ट करने की बात, तो चलो शुरुआत करो मुझे एक्सेप्ट करने की, मुझे वैसे ही बर्दाश्त करने की जैसा मैं हूँ। इतना कहने के साथ ही आस्तिक ने अरुणिमा के होठों पर अपने होंठ रख दिए। अरुणिमा इस किस के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन आस्तिक इतना ज्यादा वाइल्डली और पैशनेटली उसे किस कर रहा था कि अरुणिमा की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। अपने एक हाथ से अरुणिमा की ड्रेस को ओपन करने के साथ साथ आस्तिक उसे बेड की तरफ पुश कर रहा था। इतने दिनों के बाद वे दोनों खेल खेल में एक दूसरे के करीब आ रहे थे। अब तो अरुणिमा को इन सब की भी आदत हो गई थी, लेकिन इन सब के बावजूद उसने ये नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है। उसे आस्तिक को खुद पर हावी नहीं होने देना था। एक बार जब वो आस्तिक का विश्वास जीत लेगी, तब वो उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताएगी। आस्तिक अरुणिमा को बेड पर ले गया, लेकिन अरुणिमा ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि वो जितना हो सके खुद को सेफ रखे। आस्तिक उसके साथ हार्श हो रहा था, लेकिन अरुणिमा खुद को कंट्रोल कर रही थी। दोनों के ही कपड़े बेड से नीचे गिरे हुए थे और एक ब्लैंकेट में लिपटे आस्तिक अरुणिमा के बदन को चूम रहा था। अरुणिमा लंबी आहें भर रही थी, उसके रोएं खड़े हो रहे थे और सांसें तेज चल रही थी। अरुणिमा की गर्दन पर लव बाइट और इक्की देते हुए आस्तिक इतना ज्यादा वाइल्ड हो गया था कि अरुणिमा की सिसकियां उसके पैशन को और ज्यादा बढ़ा रही थी। आस्तिक के हाथों को अपने बदन पर महसूस करते हुए अरुणिमा खुद को देखने से रोक रही थी। चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, आस्तिक जितना हार्ड क्यों ना हो, लेकिन अरुणिमा को सॉफ्ट रहना ही पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए। उन्हीं के लिए तो वो ये सब कर रही है, लेकिन इसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करना होगा। वो बार बार आस्तिक के इस मॉन्स्टर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे उसकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी और फिर वो आस्तिक के साथ इंटीमेट नहीं हो सकती है। इसीलिए उसे जितनी जल्दी हो सके आस्तिक का विश्वास हासिल करना है। जोर से सांस लेते हुए आस्तिक ने अरुणिमा के चेहरे की तरफ देखा। अरुणिमा की सांस भी तूफान मार रही थी। दोनों की आंखों में एक अलग सा जुनून था। आस्तिक उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो बताओ जान, तुम मुझे चाहती हो ना? तुम मेरे लिए तड़प रही हो ना? कहो मुझे कि तुम मेरे लिए तड़प रही हो और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अभी अपने वजूद का एहसास करवाऊं।
अरुणिमा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने आस्तिक की आंखों में देखते हुए हामी भरी, लेकिन उसने झूठ नहीं कहा था और ना ही किसी प्रेशर में कहा था। आस्तिक की आंखों में एक कशिश थी जिसने अरुणिमा को अपनी तरफ खींच लिया था, यूं कहें कि उसे हिप्नोटाइज कर लिया था। इस वक्त सच में अरुणिमा आस्तिक को चाहती थी। उसने हिचकिचाते हुए और तड़पती हुई आवाज में आस्तिक से कहा, मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं अभी तुम्हें चाहती हूँ। अरुणिमा ने तड़प से आस्तिक के कंधे को पकड़ लिया। आस्तिक इतना जुनूनी हो गया था कि उसने अरुणिमा को समझने का मौका भी नहीं दिया, लेकिन अरुणिमा को उसका ये जुनून पसंद आ रहा था। अरुणिमा गहरी सांस ले रही थी। उसने अपना निचला होंठ दांतों तले दबा लिया था और वो धीरे धीरे दबी हुई आवाज में मदहोशी के साथ आस्तिक का नाम पुकार रही थी। लेकिन तभी आस्तिक की नज़र अरुणिमा के चेहरे पर गई। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर पसीने थे, गालों पर खुमारी थी और जुबान पर आस्तिक का नाम था। अचानक से आस्तिक को रुका हुआ देख अरुणिमा की आंखें खुल गईं और वो हैरानी से आस्तिक को देखने लगी। आस्तिक के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, उसका चेहरा गुस्से में बदल गया। वो अरुणिमा के ऊपर से उठकर दूसरी तरफ चला गया। अरुणिमा ने बेडशीट को अपने सीने से लपेटते हुए उठकर बैठते हुए आस्तिक से कहा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? गेट आउट, बाहर निकलो मेरे कमरे से, अभी के अभी मेरे कमरे से निकल जाओ। वो एकदम से चिल्लाते हुए अरुणिमा पर गरज पड़ा। अरुणिमा अचानक से डर के मारे कांपने लगी।